ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आप सब परमपिता परमात्मा की गोद में बैठकर भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग जी, अभी आप आदरणीय पंडित जी से मीरा का भजन सुन रहे थे कि घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। भक्ति क्या है? भक्ति है हृदय की पुकार। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति दर्शन में, भक्ति अर्थात परम प्रेम स्वरूपाचार। यदि किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म का पुण्य बहुत ज्यादा हो तो इस जीवन में उसके हृदय में प्रभु से मिलने के लिए एक तड़प एक प्यास पैदा होता है, जिसके हृदय में परमात्मा से मिलने के लिए तड़प प्रेम कशिश पैदा हो उसी को भक्ति कहते हैं। प्रेम में मांगना कुछ नहीं होता, प्रेम में तो देना ही देना सब कुछ होता है। जब कोई भक्त, जब कोई प्रेमी, जब सब कुछ सौंप देता है धीरे धीरे करके, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जब सब कुछ परम पिता परमात्मा के चरणों में सौंप देता है, कुछ बचाता नहीं, उस वक्त भक्ति परिपूर्ण होता है। प्रेम का भाव है सब कुछ समर्पित कर देना। वासना और प्रेम में इतना ही अंतर है कि वासना का स्वभाव है वो मांग कर खुश होता है प्राप्त करके, और भक्ति में प्रेम में दे करके खुश होता है। देते देते एक ऐसा भी समय आता है कि तन मन धन सब कुछ दे करके भी उसको लगता है कि हमने कुछ भी नहीं दिया है। मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास, कंचन स्यों पाये नहीं तोल मंदे राम लिया है मोल। जो राम है परमात्मा वाहे गुरु, वो तो मन दे करके ही मिलता है। सात संग जी भक्ति में तर्क वितर्क नहीं होता है, भक्ति का भाव ये है कि तू तू करता तू भया, मुझमें रहा ना हो आपा पर का मिट गया जित देखा तित तू। एक समय की बात है कि अकबर बीरबल से कहता है कि बीरबल आज हमने बैंगन खाया है और वो बैंगन बहुत स्वादिष्ट था, मुझको बहुत अच्छा लगा। बीरबल कहता है महाराज ये सच्ची बात है, इसीलिए बैंगन को लोग बहुगुण कहते हैं, बहुगुण बैंगन की महिमा है कि उसमें बहुत गुण होते हैं। अकबर ने बहुत ज्यादा खा लिया था, रात में उसके पेट में दर्द हुआ, गैस हो गया और दूसरे दिन अकबर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो बीरबल को कहता है अकबर कि बीरबल बैंगन तो बहुत खराब चीज है, जिसके खाने से मेरे पेट में दर्द हो गया, सेहत खराब हो गया। बीरबल कहता है महाराज ये सच्ची बात है, इसीलिए तो इसको बेगुन कहते हैं। अकबर कहता है कि कल तू कह रहा था कि बहु गुण है इसमें, बहुत गुण है, आज तू कहता है बेगुन, इसमें कोई गुण ही नहीं है। बीरबल कहता है महाराज हमें बैगन से क्या लेना देना है, आपने जो कहना है, आपने जो व्याख्या करना है, आपने जिसमें गुण बताना है हमने उसमें गुण बता देना है, और जिसमें आपने अवगुण देखना है उसमें हमने अवगुण देख लेना, क्योंकि मैं आपका दास हूं और दास की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। सत्संग जी भक्त भी ऐसा ही होता है, भक्त की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी समझ लेता है। वह अपना जीवन जो राज देह ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तो क्या घट जाई, वो कोई गिला नहीं होता परमात्मा के प्रति, वो हमेशा रजा में जीता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने, जो परमात्मा की मर्जी में हमेशा सुबह से शाम तक परमात्मा जैसा रखे हमको मंजूर है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जिसके जीवन में ये आ गया कि परमात्मा जैसे रखे मुझे मंजूर है, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को मुसलमान लोग तत्ती तई पर बैठाते हैं, ऊपर से रेता डालते हैं, इतना तसीहे दे रहा है, लेकिन फिर भी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं प्रभु की आज्ञा मानो मात है, जो प्रभु का हुक्म है वो मुझे मंजूर है। साध संगत जी, मेरा कहने का भाव यही है, भक्ति का भाव ये है कि जो प्रेमी है, जो इष्ट है परमात्मा, वो जैसे रखे हमको मंजूर है, हमें तो 24 घंटा उसके याद में जीना है, याद में जीना है, उसकी याद बनी रहे, उसकी कशिश, उसकी खींच, उसकी तड़प हमारे दिल में बना रहे, और जैसा जो है सो जीवन हो वो मुझे स्वीकार है। भक्त की महिमा इतनी अपार है कि साध संगत जी, गुजरात में एक भक्त हुआ है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता बचपन से ही उसको परमात्मा की तरफ काफी लगन, खींच, तड़प मिलने के लिए। थोड़ा बड़ा हुआ तो यूं तो उसको शादी करने का कोई मर्जी नहीं था, लेकिन माता पिता ने उसको शादी कर दी। लेकिन जो सुबह से शाम तक भक्ति करना है, सिमरन करना है, उसको क्या, क्योंकि दो प्रकार का जीवन है। वेद में लिखा है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तो संप्रित विमनक्ति धीरः, श्रेयो ही धीरो ही प्रेयसो विरनेते प्रेयो मंदो योग क्षेमात विरनेते। दो प्रकार का जीवन है कि एक तो हम प्रिय, जो चीज प्रिय लगे, अच्छा लगे, उसको सारी जिंदगी इकट्ठा करना, जैसे धन, विषय, जो पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पांच विषयों के लिए जीता है, इस प्रकार से जीना जिससे इंद्रियां खुश हो, उस जीने को हम प्रिय कहते हैं, प्रिय। और एक है श्रेय, श्रेय उसे कहते हैं कि जिसमें तो पहले कठिनाई हो, पहले मुश्किल हो, और बाद में सदा जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाए, उसको श्रेय कहते हैं। प्रेम में क्या होता है कि पहले सुख मिलता है और अनंत जन्म दुख मिलता है, अनंत जन्म दुख ही दुख मिलता है। और जो श्रेय है उसमें पहले तपस्या, पहले कष्ट और अनंत जन्मों तक आनंद, परमात्मा का मिलाप होता है। साध संगत जी, नरसिंह मेहता परमात्मा की भक्ति में इतना मस्त रहता था कि उसका गृहस्थी चलाने के लिए धन की बहुत कमी होती थी, यहाँ तक कि कभी कभी एक एक दो दो दिन भूखे भी रहना पड़ता था। और ये चीज याद रखना, भागवत में ऐसा लिखा है कि जब परमात्मा किसी के ऊपर थोड़े प्रसन्न होते हैं तो उसको धन देते हैं, संसार का सुख देते हैं थोड़े प्रसन्न होने पर, और जब परमात्मा किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा यदि किसी भक्तों के ऊपर रीझ जाते हैं तो उसके धन को छीन लेते हैं, उसके सारे सुखों को छीन लेते हैं और उसको कदम कदम पर कष्ट, कदम कदम पर जो है उसको दुख मिलता है। और जितना ज़्यादा उसको दुख मिलता है उसकी भक्ति, उसकी प्रीति और निखरता है। आप मीरा को देखें, भक्त कबीर को देखें, भक्त रविदास जी को देखें, भक्त धन्ना जट को देखें, भक्त सैन नाई को देखें, हजारों भक्तों को देखें, भक्त पलटू को देखें और भक्त सहजोबाई को देखें, दया को देखें, इसी तरह से और जितने भी भक्त हुए, भक्त गुलाल, भक्त बुल्ले शाह और चरण दास, जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवन में कष्ट हुआ है और जैसे जैसे उनके जीवन में कष्ट हुआ है उसके जीवन में निखार भी ज्यादा आया है। सत्संग जी नरसिंह मेहता का जीवन ऐसा हो गया था कि उसको रोटी के बगैर बहुत मुश्किल हो, बहुत ज्यादा मुश्किल। उसकी लड़की जवान हो गई और शादी के लिए कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसके घर में कोई आया, परमात्मा आप एक सेठ बन करके आया और उसकी मिसेज को उतना पर्याप्त धन दे गया जिससे उसकी लड़की की शादी हो जाए। समा पार करके उसके लड़के की शादी हो गया परमात्मा की कृपा से। एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान लोग आए और खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई अन्न नहीं था। वो बाजार में गया कि बाजार में जा करके कुछ उधारा ले आए अन्न। जब वो एक दुकान में गया, दो दुकान में गया, कोई उधारा नहीं दे रहा था। कहते हैं कि परमात्मा आप घर आकर के और चावल दाल अन्न सब कुछ उसके घर में आके भर दिया। सत्संग जी जब नरसिंह मेहता निराश होकर के घर आया और घर में साधु संत बहुत से लोग बैठे थे, आकर के कमरे में जाकर के अपने पत्नी को नरसिंह मेहता कहता है कि देखो किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं, ये संत लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, भजन कर रहे हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको कोई प्राण भी मांगे तो दे देंगे ताकि इनका प्यास मिट जाए। उनकी पत्नी कहती है आप झूठ बोलते हैं, आधा घंटा पहले आप आ करके सारा कुछ तो दे गए थे, आटा चावल सारा कुछ, घी सब कुछ दे गए और हमने सारा भोजन बना के रखा है और ये सारे संतों को छकाना है। नरसिंह मेहता कहता है मैं तो आया ही नहीं था, मैं तो बाजार में घूम रहा था। कहते नहीं अभी थोड़ा देर पहले तो आए थे आप। साध संगत जी परमात्मा नरसिंह मेहता का रूप धारण करके उसके घर में आया और सब कुछ दे गया। जब तुम परमात्मा का हो जाते हो, वाहिगुरु के हो जाते हो, तो परमात्मा आप तुम्हारा सारा कार्य करता है। साध संगत जी इसी तरह से एक सैन नाई हुआ है, सैन नाई राजस्थान में, सैन नाई एक ब्रह्मज्ञानी संत हुआ है और उनकी वाणी पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है। सैन नाई रोज राजा के पास जाता है, मुट्ठी चापी करता है। और सैन नाई के अंदर एक गुण और भी था कि वो जर्राह था, मलहम पट्टी का भी काम करता था। राजा के पीठ में कैंसर का फोड़ा हो गया था और इतना ज्यादा दर्द होता था उसको कि रात दिन बेचैन रहता था, बेचैन रहता था राजा। साथ संगत जी, एक समय ऐसा हुआ कि सैन्य नाई के घर में 15-20 साधु आ गए, संत आ गए और सारी रात उसके घर में जो है सो भजन कीर्तन चलता रहा। भजन कीर्तन सुबह 10-11-12 बजे तक चलता रहा। सैन्य नाई रोज सुबह 8 बजे राजा के पास जाता था, आज वो भूल ही गया जाना, राजा के पास जा नहीं सका। जब 12 बज गया और उसको याद आया कि मुझको तो राजा के पास जाना था, दूसरे दिन सुबह सुबह सैन्य नाई राजा के दरबार में जाता है, ये सोचकर कि जाते ही उसके चरणों में गिर पड़ेंगे, क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि राजा की मर्जी होती है। छोटे छोटे बातों के लिए राजा अगले को प्राण दंड दे देता है। सैन्य नाई सोचता है कोई नहीं, जाते ही हम क्षमा मांग लेंगे। सात संगत जी, सैन्य नाई जाता है राज दरबार में और जाते ही राजा के चरणों में गिर पड़ता है। सैन कहता है कि आप मुझको क्षमा कर दें, मैं कल आ नहीं सका। राजा राज सिंहासन से उठ करके नीचे आता है और उसके गले में 9 लखा हार था उसको निकाल करके सैन नाई के गले में डालता है। सैन, कल जो तुमने हमको मलहम लगाया है, कल जो तुमने हमारी सेवा किया है, कल जो तुमने पट्टी बांधा है, जिसका ये फल हुआ है कि मेरा कैंसर का फोड़ा ठीक हुआ है, सैन बताओ तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तू कह तो मैं आधा राज्य भी तुमको दे दूं, तू कह तो मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। साध संगत जी, सैन के गले में 9 लखा हार डाल करके राजा अपने गले से लगाता है और कहता है, सैन तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं। वो बार बार सैन कहता, कल तो मैं आया ही नहीं था, कल हमारे घर में साधु संत आए थे और इतना हम उस कीर्तन में भजन में मस्त हो गए कि मैं आपके पास आना ही भूल गया था। राजा कहता है, सैन तू झूठ ना बोल, कल तू आकर के मेरा सदा के लिए मेरा फोड़ा ठीक कर गया, कैसा तुमने मलहम लगाया। सैन विचार करता है कि जिस परम पिता परमात्मा वाहिगुरु का मैं सुमरण कर रहा था, वही सैन बन करके आ करके राजा का कैंसर का फोड़ा ठीक किया, मलहम लगाया, राजा का सेवा किया। एक घड़ी के सिमरन से परमात्मा हमारे लिए ऐसा सारा कुछ किया, क्यों ना हो कि बचा हुआ जिंदगी सारा का सारा मैं परमात्मा को ही दे दूं। साध संगत जी, सैन ने उसी वक्त घर छोड़ दिया, उसी वक्त अपना जो काम था वो भी छोड़ दिया और हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, परमात्मा के नाम में इतना मस्त हो गया, इतना पागल हो गया कि वो जिधर भी देखता है परमात्मा का रूप को देखता है। और उसने ज्यों जन्मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, सैन नाई ब्रह्म ज्ञानी हो गया, परमात्मा का दर्शन करके वो परमात्म स्वरूप हो गया। साध संगत जी, एक सैन नाई परमात्मा को पा सकता है, एक जुलाहा कबीर परमात्मा को पा सकता है, एक रविदास जूता सीने वाला परमात्मा को पा सकता है, हमारे आपके अंदर क्या कमी है जो हम नहीं पा सकते। सिर्फ कमी क्या है कि हमारे अंदर प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। आप देखना कि सिर्फ $150 के लिए जब हमको ड्यूटी पर जाना होता है तो 2 घंटा पहले हम कितनी तैयारी करते हैं कि 2 मिनट लेट ना हो जाए। जितना हमें $100-200 के लिए खींच है, इतना भी खींच हो जाए परमात्मा के लिए तो भी मनुष्य की गति हो सकती है। लेकिन मैं देखता हूं कि मनुष्य के अंदर प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। और संत महापुरुष आपके अंदर प्यास पैदा करते हैं। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। संत को नित्य अवतार कहा है। संत जो है हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए गली गली में आकर के हमें परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का भजन, परमात्मा की कथा को हमको सुनाते हैं। साध संगत जी, कथा की इतनी महिमा है कि साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं, सबसे उत्तम हर की कथा है। हरि की जो कथा है वो सबसे उत्तम है। एक समय की बात है, भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे, अचानक देखते क्या हैं कि प्रयागराज में भारद्वाज मुनि राम की कथा सुनाने के लिए पधार रहे हैं। भगवान शंकर ने अपना ध्यान छोड़ करके प्रयाग की तरफ, इलाहाबाद की तरफ जा रहे हैं। पार्वती पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, मैं राम की कथा सुनने के लिए प्रयागराज जा रहा हूँ। पार्वती कहती है कि सारी दुनिया आपको लोग पूछते हैं और आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, राम कथा जुग जुग अटल। राम की जो कथा है वो जुग जुग से अटल है, और जो राम की कथा को सुनता है वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है, क्योंकि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो राम के शरण में जाता है, जो परमात्मा के शरण में जाता है, वो सारे दुखों से छूट जाता है। और साध संगत जी, भगवान शंकर हर प्रयागराज में जाकर के भरद्वाज मुनि के चरणों में बैठ करके हरि की कथा को सुन रहे हैं। हरि की कथा सुनने से जो मन के अंदर व्यथा है, जो दुख है, जो क्लेश है, वो सारे मिट जाते हैं। एक समय की बात है कि भिलनी यूं तो कोई ऊंचा जाति नहीं होता, कोई नीचा जाति नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा लेता है ना, तो शूद्र ही पैदा लेता है, शूद्र ही पैदा होता है। कोई कोई ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण होता है। पैदा जो भी लेता है वो तो शूद्र ही होता है। क्यों? जिसकी दृष्टि शरीर, चमड़े, मांस के ऊपर है, वो तो शूद्र ही है। ब्रह्म को जानकर, परमात्मा को जानकर कोई कोई ब्राह्मण होता है। साध संग जी, हुआ क्या, भिलनी अभी जवान थी, उसके माता पिता उसका शादी कर रहे थे। उसके पिता ने 200-300 भेड़ बकरियां को इकट्ठा किए। भिलनी पूछती है कि पिताजी, ये भेड़ बकरियां हमारे घर में 200-300 क्यों लाए हैं? उसके पिता कहते हैं, भिलनी, तुम्हारे शादी में हमने पार्टी देना है, तो ये जितनी भी भेड़ बकरियां हैं इसको काटेंगे, इसका मीट बनाएंगे, और जो भी लोग आएंगे, अतिथि लोग, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। साध संग जी, उसका पुण्य उदय हुआ। रात में भिलनी विचार करती है कि मेरे शादी के लिए, मेरे 2 दिन की खुशी के लिए ये जो 200-300 भेड़ बकरियां हैं सबके प्राण जाएंगे। क्यों ना हो कि मैं शादी ही ना करूं और मैं यहां से भाग जाऊं, ताकि 200-300 जो भेड़ बकरियां हैं इसके प्राण की रक्षा हो जाएगी। आधी रात को उठ करके भिल्ली वहां से दौड़ जाती है, जा रही है, जाते 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 3-4 दिन के बाद एक आश्रम में पहुंचती है। वह आश्रम मतंग मुनि का आश्रम था। मतंग मुनि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे, ऋषि थे वो। मतंग मुनि के चरणों में जाकर के भिल्ली अपने को समर्पित करती है और कहती है कि मैं आपकी लड़की के समान हूं, आप कृपा करके मुझको आप शरण में रख लें। साथ संगत जी, मतंग मुनि ने उसकी जिज्ञासा, उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसके लगन को देख करके आश्रम में रख लेते हैं। भिल्ली सारा दिन गुरु की सेवा करती है और गुरु के हुक्म पर चलती है। साथ संगत जी, हुआ क्या, क्योंकि जो उपजियो सो विनश है, शरीर करके कोई आज तक अमर नहीं हुआ है, जो उपजियो सो विनश है। इस संसार में शरीर करके अवतार भी नहीं रहे हैं, शरीर करके कोई भी इस संसार में नहीं रहा है। मतंग मुनि का जब शरीर समाप्त होना था तो भिल्ली को कहते हैं, ऐ भिल्ली, मैं अब अपनी जो शरीर है इसको पंच भौतिक में मैं लीन कर रहा हूं, तुम चिंता नहीं करना, तुम दुखी नहीं होना, तुम्हारे आश्रम में भगवान राम आएंगे, ये तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ संगत जी, भिल्ली बहुत रोती है कि गुरुदेव, आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रह सकती हूं। गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति स्नेह पैदा हो जाए तो इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। ईश्वर तय गुरुमय अधिक धारे भक्ति सुजान, स्वामी निश्चल दास जी कहते हैं, ईश्वर से भी ज्यादा भक्ति गुरु के प्रति हो। और कबीर जी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोवे खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु के बगैर आज तक किसी ने परम पद को नहीं पाया है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सूरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना पावे। गुरु उसको कह रहे हैं कि भिल्ली तू चिंता ना कर, तुम्हारे आश्रम में भगवान राम आएंगे और तुमको उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। साथ संगत जी, उसी वक्त मतंग मुनि वहां पर देखते देखते ही वो बैकुंठ चले गए और उनके वचनों को याद करके भिल्ली रोज बहुत दूर रास्ते तक झाड़ू लगाती है, पानी छिड़कती है, फूलों को तोड़ कर लाती है और रास्ते में फूलों को बिछाती है, और बेर तोड़कर, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़े लिखे भी पाते भी नहीं परमात्मा को, वो पीछे पीछे रह जाते हैं। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, भोले भाई मिले रघुराया। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा स्याना समझते हैं, वो तो तर्क वितर्क में रहते हैं, वो उस परम भक्ति को पाने में असमर्थ होते हैं। भिल्ली बेर को तोड़ती है और खाती है, थोड़ा सा देखती है, जो खट्टा है उसको छोड़ देती है, जो मीठी बेर है वो थाली में ला करके थाल में सजाती है कि भगवान राम आएंगे। बहुत से साधु लोग जा रहे थे, वो कहते हैं, भिल्ली तू क्या काम करती है, तू रास्ते में फूल भी बिछाती है, झाड़ू देती है, पानी छिड़कती है, ये क्यों ऐसा करती है, तू पागल हो गई है। भिल्ली कहती, मुझे नहीं पता, हमारे गुरुदेव कह गए हैं, और चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। सारा जगत का व्यवहार बदल सकता है लेकिन मेरे गुरु का वचन नहीं बदल सकता है, ऐसा गुरु के ऊपर विश्वास। गुरु की वाणी को मंत्र समझे, जो गुरु परमात्मा से मिला दे। गुरु के बगैर आज तक किसी ने परमात्मा को पाया भी नहीं है, जीवन के रहस्य को किसी ने जाना भी नहीं है। साध संगत जी भेलनी कहती है कि हमारे गुरुदेव कह गए हैं कि तुम्हारे आश्रम में भगवान राम आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। वो जितने भी साधु लोग थे कहते तू पागल हो गई है, ना तुमने वेद पढ़ी है, ना शास्त्र पढ़ी है, ना तुमको कोई विद्या प्राप्त है, ना तुम्हारा बड़ा आश्रम है। जो साधु लोग इतने समय से तपस्या कर रहे हैं भगवान उनके आश्रम में आएंगे तुम्हारे आश्रम में आना? कहते मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारे गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। सत्संग जी रोज झाड़ू लगाती है, पानी छिड़कती है, फूल बिछाती है और सारा दिन उड़ीक करती है, रास्ते में देखती रहती है कि भगवान अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। तड़प एक कशिश, उससे मिलने के लिए एक, जब जिस तरह से मीरा को है तड़प रही है और जिसके हृदय में उसको मिलने के लिए तड़प नहीं है वह तो व्यक्ति है ही नहीं। वो तो ऐसा कहते हैं कि जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजे डार, और जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जा। जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा से मिलने के लिए तड़फ नहीं है वो तो समझ जाओ कि धरती पर बोझ है, वो धरती पर यूं ही समझो कि लाश चलता फिरता है, वो धरती पर बोझ बना हुआ है। साध संगत जी तीन चीज़ें दुर्लभ है, तीन चीज़ें जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। और तीन चीज़ें क्या है? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव तद देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। सबसे पहले तो ये जो शरीर है ये बहुत दुर्लभ से मिला है, बहुत मुश्किल से। लख 84 जून विच मानुख जन्म दुर्लभ हो पाया। 84 लाख जूनियों में ये जो शरीर है ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है मनुष्यत्व। और मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, उससे मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाए, ये भी दुर्लभ है, ये सबको नहीं होता। जिसके ऊपर वाहिगुरु की परमात्मा की बड़ी कृपा हो उसके अंदर प्यास पैदा होता है। और तीसरा दुर्लभ चीज क्या है? महापुरुष संश्रया है, किसी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष का शरण मिल जाए, ये सबसे ज्यादा कीमती है। यदि किसी को महापुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का शरण मिल जाए, उनके चरणों में जीने का अवसर प्राप्त हो जाए तो समझ जाओ वो बैकुंठ से भी ज्यादा कीमती है। क्यों? के नह शीतलंग चंद्र देव है, नह शीतलंग बावन चंदन है, नह शीतलंग शीत रोतेन नानक शीतलंग साध स्वजन है। किसी साधु के चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हो जाए इससे बड़ी और कोई शीतलता नहीं है। साध संगत जी भेलनी उड़ीक कर रही थी, उड़ीक करते करते इंतजार करते करते उसकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी थोड़ी जाने लग गई थी, आंख थक गया था, लेकिन फिर भी प्रेम की आंसू उसके आंखों में निकलता है और 24 घंटा याद करते करती है भेलनी भगवान आप कब आएंगे, भगवान आप कब आएंगे, राम का सिमरन करती है, राम 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 सिमरन करी जा रही करी जा रही। अचानक भगवान राम आते हैं। भिल्ली बैठी हुई थी, दोनों हाथों से भगवान राम उसके बाहों को पकड़ती है और पकड़ते हैं भगवान राम और कहते हैं, भिल्ली तुम अपनी नज़रें ऊपर करो, मैं आ गया। साथ संगत जी, जैसे ही भिल्ली देखती है कि तीनों लोगों के नाथ भगवान राम पधारे हैं, उसके अंदर इतना प्यार पैदा हो गया कि अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख करके प्रेम की इतने आंसू उसके अंदर से निकला कि भगवान राम के चरणों को धो डाली और प्रेम से रोई जा रही है। भगवान उसको जो मिलन इतना हुआ, उस वक्त भगवान राम कहते हैं, भिल्ली तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सारा संसार का सुख चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। बैकुंठ चाहिए, बैकुंठ दे देता हूँ। साध संगत जी, वहाँ पर भिल्ली कहती है कि भगवान, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दें कि मेरे अंदर कोई मांग ही ना रहे। साध संगत जी, भक्त तो बैकुंठ भी नहीं मांगता, मुक्ति भी नहीं मांगता, वो तो सिर्फ भिल्ली कहती है, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप अपने चरणों में हमें निवास दे दो, यदि आप हम प्रसन्न हैं तो आपके चरणों की धूल को मैं हमेशा अपने मस्तक में लगाता रहूं। साध संगत जी, देखते देखते वहाँ पर एक प्रकाश पैदा हुआ और उस ब्रह्म अग्नि में भिल्ली का शरीर स्वाह हुआ और वो दिव्य लोक को चली गई, बैकुंठ में चली, महाज्योत में लीन हो गई। भक्ति ये है, भक्ति का भाव ये है, अपने को इष्ट के चरणों में मिटा देना है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भक्ति का भाव ये है, परम प्रेम स्वरूपाचार, हृदय में परम प्रेम प्रकट हो जाना, और प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है जब देने की भावना पैदा होती है। देता जाए, देते देते सब कुछ दे डाले और सब कुछ दे करके भी कुछ मांगने की इच्छा ना रह जाए, उस वक्त भक्ति पूर्ण होती है। सांडिल्य ऋषि कहते हैं, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अथातो भक्ति जिज्ञासा का भाव ये है कि जिसके हृदय में भक्ति की जिज्ञासा प्रकट होती है, वह व्यक्ति हमेशा अपने इष्ट, अपने भगवान के चरणों में अपने मन को डाल करके, अपने मन को बेच करके अपने इष्ट का चलते फिरते, सोते बैठते जागते दर्शन करता है। साध संगत जी, भक्ति की महिमा अपार है। जिन भक्तों ने उस प्रभु परमात्मा को पाया है, उसका जीवन जो है पवित्र हो गया है और तीनों लोकों से भी ज़्यादा सुख भक्ति में है। साध संगत जी, आज का मनुष्य परेशान है बहुत ज़्यादा, और शायद ही कोई ऐसा हो जो मन से परेशान ना हो। ये दास 27 तारीख से, ये जो महीना अगस्त का है, 27 अगस्त से लेकर सत्ताईस सितंबर से लेकर 3 अगस्त तक, 3 अक्टूबर तक, ये जो है ना, आप लोगों ने हमें महीना भी सारा भुला दिए, ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये शांति निकेतन जो हॉल है, इसमें ध्यान का क्लास आरंभ हो रहा है, सुबह 6:45 से लेकर 7:15 तक। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उसमें आ करके अपने जीवन को सफल करें, और मैं 5-7 मिनट ध्यान की महिमा बता रहा हूँ। ध्यानेन सदृशोन आस्त
12:50 तक रखना शुरू, 12:30 के बजाय 12:50 तक आप कंटिन्यू कर।
ठीक है थैंक यू। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणम। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है, और ध्यान का भाव है अंदर खुदाई करना, अंदर खोजना, उस अमृत को, जिस अमृत को प्राप्त करके मनुष्य सदा के लिए अमर हो जाता है। सत्संग जी, जैसा मैं कह रहा था कि आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने मन से परेशान ना हो। जो कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती है ना, मेंटल हॉस्पिटल में, वो तो थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है तो भर्ती होते हैं, लेकिन 99% जो घूम रहे हैं ना, वो थोड़े थोड़े पागल तो है ही हैं, और उसका कारण सिर्फ इतना ही है, मन से परेशानी। शायद ही कोई बहू से परेशान है, कोई सास से परेशान है, कोई लड़के से परेशान है, कोई लड़की से परेशान है, कोई लड़के लड़कियां अपने माता पिता से परेशान हैं, कोई पड़ोसी से परेशान हैं। हर एक व्यक्ति जो है चिंताओं का एक बोझ लेकर के चल फिर रहा है। इन चिंताओं से कैसे मुक्त हों और हमारा जीवन आनंद से भर जाए, उसके लिए ही ये ध्यान का क्लास आरंभ हो रहा है। जीवन के सारे रहस्यों को बताया जाएगा, और खास करके जो लड़के लड़कियां जैसे पढ़ाई करते हैं, 2-3-4 पढ़ते हैं और उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या पढ़ा। हम गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं, और पता नहीं चलता हमने क्या पाठ कर दिया। मन कहीं कहीं फिर रहा है और पाठ सामने होता है। इसका कारण क्या है कि मन जो तुम्हारा है वो मालिक हो गया है, तुम उसके नौकर हो गए। होना तो ये चाहिए था कि मन नौकर रहे और तुम मालिक हो। जब नौकर मालिक बन जाए ना, तो उस मालिक का बहुत बुरा हाल होता है। आज हमारी कुछ ऐसी ही स्थिति है। आज जो है हम मन के हाथ बिके हुए हैं, और जिसके कारण कदम कदम पर हम दुखी हैं। कदम कदम लोग आते हैं हमारे पास, एक ही चीज़, स्वामी जी टेंशन बहुत है। क्या टेंशन? जब तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, सारा रोटी पानी सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं चलता, परेशान है। हम हर एक परिस्थिति में कैसे आनंदित हों, कैसे सुखी हों, मेरा जीवन शांति से भर जाए, उसके लिए आपको ये ध्यान का क्लास 27 तारीख से आरंभ हो रहा है, और उसका कोई फीस नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे भारत की परंपरा है कि जो ब्रह्म विद्या है ये बेचा नहीं जाता है, और ब्रह्म विद्या का कोई कीमत नहीं होता है, और जो ब्रह्म विद्या का कीमत समझते हैं वो मूर्ख हैं, वो इसके वैल्यू को नहीं समझते। ब्रह्म विद्या तो प्राणों को दे के ली जाती है। ब्रह्म विद्या लेने का एक ही तरीका है, श्रद्धा और प्रेम। यदि आप श्रद्धा और प्रेम से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, तो वो ब्रह्म विद्या फलीभूत होता है। भगवान पतंजलि कहते हैं, अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम। योग क्या है कि अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखना। हम जहां चाहे आंख को ले जाना वहीं जाए, हम कान को जो सुनने के लिए बोले वही सुने, ये ना हो कि 2-2 घंटा 4-4 घंटा किसी की निंदा चुगली सुनने में लगा दें। हम जो बोलना चाहे वही बोलें, ये ना हो कि हम जो है दो इकट्ठे हों और अपना कूड़ा उसके ऊपर डालें और दूसरे का कूड़ा अपने सिर पर डालें। होता क्या है? आप जब इकट्ठे होते तो करते क्या हो? वाच करो, वाच योर सेल्फ। जो हमने हफ्ता सात दिन जो कूड़ा इकट्ठा किया है, निंदा चुगली तरह तरह की जो इधर उधर की बातें हैं, वही दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और दूसरे से वही चीज ले लेते हैं। हमारा जीवन पवित्र कैसे हो? क्योंकि अमृतस्य पुत्रः, उपनिषद में वेद की घोषणा है अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो। और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य प्राणी बोधत, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदन्ति। ऐसा वेद कह रहा है कि उत्तिष्ठत, उठो, जो ये मोह रूपी नींद में जो तुम सोए हुए हो इससे तुम उठो, और उठ करके उत्तिष्ठत जागृत, जाग जाओ। यहां पर जागने का भाव ये है कि ऑलवेज अवेयरनेस, अवेयरनेस हो तुम्हारे अंदर, सत्य क्या है असत्य क्या है, विवेक पैदा करो। किस मार्ग पर चलकर हम सत्य की प्राप्ति करेंगे और किस मार्ग पर चलने से हमारा विनाश होगा, हमारा हम दुख को पाएंगे। जिस मार्ग पर चलने से तुम्हारा अधोगति हो उस मार्ग को त्याग करके जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है उसको आप अपनाओ। साध संगत जी, भगवान पतंजलि कहते हैं अथ योग अनुशासनम, तुम अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखो। आंख कान जिह्वा, आप जो मर्जी जो है इसके अंदर डाली जाते हैं, भूख नहीं है फिर भी इसके अंदर डाली जाते हैं, जैसे कोई डस्टबिन हो ना, गार्बेज जो भी कोई दे दिया उसको डाल देते हैं। ये जो शरीर है ये सात्विक भोजन प्राप्त करने के लिए बना है। सात्विक भोजन जो तीन प्रकार के आहार हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक, यदि आप तामसिक भोजन खाएंगे, तामसिक भोजन है क्या, मीट हो गया, शराब हो गया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये तामसिक भोजन है। जब आप तामसिक भोजन सेवन करेंगे तो होगा क्या, आलस्य प्रमाद नींद हिंसा, हमेशा एग्रेसिव होगा मन, किससे लड़े। हम खाते हैं तामसिक पदार्थ और कहते हैं हमारा ध्यान लगे, हमारे जीवन में शांति हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान पतंजलि ने कहे हैं कि यदि तुम शांति और आनंद को चाहते हो तो सात्विक भोजन करो, फल हो गया, दूध हो गया, रोटी हो गया, जिसको खाने से आपका मन चंचल ना हो, जिसको खाने से आपके जीवन आपके शरीर में आलस्य पैदा ज्यादा ना हो उसको सात्विक भोजन कहते हैं। राजसिक भोजन उसे कहते हैं जो जिसको चंचलता पैदा करे मन को, जैसे मिर्च मसाले वाली ज्यादा चीजें, तलिया चीजें, फास्ट फूड वगैरह जितने भी हैं ये राजसिक भोजन है। जो व्यक्ति अंदर आत्मा का दर्शन चाहता है, जो ये चाहता है उस अमृत को प्राप्त करे जो सबके अंदर है, घट घट में हरजु बसे संतन कहियो पुकार, सबके अंदर वो परम पिता परमात्मा का वास है। गुरु महाराज कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुहप मध्य जो वास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो एहो गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिने मिटे न भ्रम की काई। हर एक व्यक्ति के अंदर वो अमृत है लेकिन जिन खोजा तिन पाया। सत्संग जी, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा काहे कहूँ समझाए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसो घट घट राम है मूर्ख बुझे नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर वो कस्तूरी है, वो खुशबू है, वह अमृत है, लेकिन उस अमृत को कैसे प्राप्त करें उसके लिए तुम्हें अंदर अंदर यात्रा करने की जरूरत है, अंदर यात्रा करने की जरूरत है। हमने बहुत यात्रा करके बाहर देख लिया है, आज तक तो नहीं मिला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको 50 साल हो गया है, 60 साल हो गया है, 70 साल हो गया है, हैं? और मौत जो है ना आकर के बैठ भी गया है। कहते हैं राजा दशरथ एक बार सुबह सुबह स्नान करके शीशा देख रहे थे, अपनी पगड़ी ठीक कर रहे थे, मुकुट, तो देखते क्या है कि एक केस जो है सफेद हो गया है। जब उसने देखे कि एक केस मेरा सफेद है, उसी वक्त वैराग्य हो गया उनको। अपने मंत्रियों को बुलाए और कहते हैं ऐसा करो कि अब मौत आकर के हमारे ऊपर बैठ गया है, ये राज्य पाट जो है ये भगवान राम को दे करके अब मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। सा संग जी देखो, राजा दशरथ को एक पका हुआ केस देख करके वैराग्य पैदा हो गया है, और हमारे सारे केस पक गए फिर भी कोई वैराग्य नहीं। और हम कैसे मूर्ख हैं कि पके हुए केस में कालिख लगा करके काला कर लेते हैं, इसलिए है ताकि मौत नजर ना आवे। लेकिन तुम जितना मर्जी प्रयास कर लो, मौत की ऐसी महिमा है कि वो पहचान लेता है कि इसका केस पका हुआ या सफेद है। साथ संग जी, एक समय की बात है, एक राजा सुबह सुबह स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा उसने कि पीछे किसी ने हाथ रखा है। साथ संग जी इसको ध्यान से सुनना, हो सकता है आपके चित्त में ये बस जाए और आपके जीवन में क्रांति पैदा हो जाए, जो आप सोए हुए हैं उठ जागो और सत्य की खोज के लिए तरफ चल पड़ो, जिस तरह बुद्ध ने, जिस तरह महावीर ने, जिस तरह कबीर ने, जिस तरह गुरु नानक देव जी ने, जिस तरह सारे भक्तों ने और इनलाइटेंड महापुरुषों ने सत्य की खोज किए हैं, आप भी सत्य की खोज करके अपने मौत से पहले पहले उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लें। वो राजा स्वप्न देखता है कि मेरे पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। राजा मुड़ करके देखता है, राजा पूछता है तुम कौन हो? कहते हैं राजन मैं तुमको लेने आया हूं, लेकिन अभी थोड़ा देर है, 12 घंटे में मैं लेने के लिए आऊंगा, मैं चाहता हूं तब तक थोड़ी तैयारी कर लो, तुमको 12 घंटे अवसर दे देता हूं और ठीक जगह पर पहुंच जाना, मुझे ज्यादा परेशानी ना हो ले जाने में। साथ संग जी, इसी परेशानी में दुख में उसका नींद टूट गया। राजा बहुत बेचैन, वो तो बेचैन हो गया, शायद आप लोग ना हो बेचैन, जिस नींद में सोए हो ने उससे जाग जाओ, एक बार जाग के देख लो कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने वाच करो लाइफ को, मैंने 50 साल में क्या किया है, 60 साल में क्या किया है, 2-4 ठीकरे इकट्ठे किए हैं, 2-4 लोहे इकट्ठे कर लिए हैं, और क्या किया है, इससे ज्यादा क्या किया है, 2-4 बच्चे जन्मा लिया, हालांकि वो तुमने नहीं किया, वो तो परमात्मा ने किया है, लेकिन मान लिया है हमने किया है, किया तुमने कुछ भी नहीं है, अहंकार जरूर जो है इकट्ठा कर लिया है। राजा अपने मंत्री को बुलाया, कहता है मैंने बहुत दुखदायी सपना देखा है, इस स्वप्न से कैसे बचा जाए, यदि मौत आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। मंत्री कहता है राजन चिंता ना करो, तुम ऐसा करो, मौत आएगा ना राजदरबार में, तुम एक दिन के लिए राजदरबार से और जगह चले जाओ, और ऐसे घने जंगल में चले जाओ जहां मौत जावे ही ना, समझे ना, वो आएगा राजदरबार में, चारों तरफ घूमेगा, कमरे कमरे देखेगा, तुम मिलोगे नहीं, आप भी लौट के चला जाएगा, और उसको इतना टाइम भी कहाँ है, क्योंकि कितने लोगों को लाना होता है। लोग सोचते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग रोज बढ़ते देखता है और मन अपने मन को कहता है वो तो उसके साथ घटा है, तेरे साथ थोड़े घटना है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। हुआ क्या कि मंत्री ने सलाह दिया कि आपका जो घोड़ा है जो तेज दौड़ता है उस घोड़े पर चढ़ करके तुम घने जंगल में चले जाओ, ऐसे घने जंगल में जहां जा नहीं सकता कोई। सात संगत जी, हुआ क्या कि राजा घोड़े पर बैठा और जाने लगा। उसकी पत्नी कहती है कुछ खाने पीने का सामान भी ले लो, कुछ पिज्जा कोई बर्गर कुछ कुछ तो ले जाओ। उस वक्त जब मौत नजर आवे तो किसी को नजर आता है पिज्जा और बर्गर नजर आता है, कहते नहीं तुम छोड़ो इसको अभी हमें कुछ नहीं जाना। महापुरुष लोग कहते हैं दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखने से पाप नहीं होता है और नारायण को याद रखने से कल्याण होता है। वहां से वो राजा अपने घोड़े के ऊपर चढ़ करके जा रहा है, दौड़ाई जा रहा है। दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गया, थक गया राजा, घोड़ा भी थक गया। एक दरख्त के नीचे घोड़े से उतर करके अपने घोड़े को बांधता है और दूसरे दरख्त के नीचे वो लेटता है आराम से, ये सोच करके कि हमने जो है मौत को जीत लिया है, हम उस जगह में पहुंच गया हूं कि जहां मौत नहीं आ सकती। सत्संग जी, जैसे वो लेटने लगा उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा, कहता है राजन थैंक यू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, मैं बहुत चिंता में था कि तुमको यहां से ले जाना था और तुम बहुत दूर था, मैं बहुत चिंता में था, बहुत बहुत थैंक यू तुमने जो है इस जगह पर आ गए। सात संगत जी उसने डर करके और एकदम उसके चरणों में पड़ गया, कहता है प्लीज सेव मी, कुछ समय और दे दो। कहता है यहां पर जो है कोई रियायत नहीं। सात संगत जी, मौत आना नहीं है, मौत सबके ऊपर जो है मंडरा रहा है, आ चुका है। गुरबानी में एक पंक्ति है, जननी जानत सुत बड़ा होत है। माँ सोचती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, वो मौत के मुंह में जा रहा है। हर एक आदमी की आयु कम हो रही है, बड़ा नहीं होता कोई आदमी, छोटा हो रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन और घटत है। सात संगत जी, जब मर ही जाना है तो क्यों ना हो मौत से पहले उस अमृत को प्राप्त कर लें, जिस अमृत को प्राप्त करने के बाद कभी मौत नहीं होती। ओ अमृत क्या है, अमृतस्य पुत्र है, ओ अमृत तुम्हारा स्वरूप है। इस ध्यान के क्लास में जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, परमात्मा कौन है, हमारा परमात्मा से क्या संबंध है, मनुष्य मर क्यों जाता है, मर के कहां जाता है, और मैं परेशान क्यों हूं, परिवार में रह करके, संसार में रह करके, और हर एक परिस्थितियों में आनंदित कैसे रहा जाए, ये सारे रहस्य इस ध्यान के क्लास में बताए जाएंगे। और इसका कोई फीस नहीं है, इसका फीस एक रखा है हमने, वो है श्रद्धा और प्रेम। एक समय से आए और श्रद्धा प्रेम से सुने, यही फीस है। क्योंकि जितना ज़्यादा श्रद्धा होगा, जितना ज़्यादा प्रेम होगा, उतना ज़्यादा जो है आप गहराई में पहुँचेंगे। सात संगत जी, जिसको तुम खोज रहे हो, जिस आनंद, जिस सुख को तुम बाहर तलाश कर रहे हो, वो सुख का भंडार अमृत तुम्हारे अंदर है। ऐसा कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को ये श्राप हुआ कि आज से सातवें दिन तुम्हारी मौत होगी। लंबी कहानी है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इतनी समा भी नहीं है। जब परीक्षित को यह श्राप हुआ कि आज से सातवें दिन तुम्हारी मौत हो जानी है, तो उसने मृत्यु से पार जाने के लिए, हाउ टू गो बियॉन्ड डेथ, उसने उस अमृत की खोज में संतों के पास गया। संतों ने राय दिया कि तुम ऐसा करो, आज से सातवें दिन तुम्हारी मौत होनी है, तुम सात दिन भागवत सुन लो। सात संगत जी, उसको श्राप हो गया था कि आज से सातवें दिन तुम्हारी मौत होनी है। विचार करके देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को यह श्राप मिला हुआ है कि सातवें दिन मौत हो जानी है। कोई ऐसा आदमी आपने देखा जिसकी आठवें दिन भी मौत होती हो? लेकिन उस परीक्षित ने मौत से बचने के लिए संतों के पास जाकर के अमृत प्रदान किया, अमृत को पाया, और उस अमृत को पाकर के वो सदा से के लिए अमर हो गया और मृत्यु से पार चला गया। अमृत क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। अमृत क्या है? परमात्मा का दर्शन ही अमृत है। अमृत क्या है? ध्यान के द्वारा अपने स्वयं को खोज लेना ही अमृत है। अमृत क्या है? जो परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसको पा करके, उसको खोज कर, उसको अनुभव करके, उसके साथ एकमिक हो करके सदा के लिए अमर हो जाना। जब उसने भागवत सुनना शुरू किया तो 33 करोड़ देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए और कहते हैं, परीक्षित तुम ऐसा करो कि मैं तुमको अमृत देता हूं जिससे तुम मौत से बच जाओगे। ऐसा करो, ये जो कथा रूपी अमृत है ना, ये मैं सुन लेता हूं और ये अमृत तू प्राप्त कर ले। वहां पर परीक्षित कहता है, हम इस अमृत को मुझे नहीं चाहिए। ये जो कथा रूपी अमृत है, ये जो ज्ञान रूपी अमृत है, यदि आप इसको प्राप्त कर लेते हैं श्रद्धा और भक्ति से, तो आप जीते जी परम पद को पा लेंगे। जो बुद्ध ने पाया है, जो महावीर ने पाया है, जो सरहप्पा ने पाया है, जो नागार्जुन ने पाया, जो कबीर ने, जो रविदास जी ने, जो गुरु नानक देव जी ने, और जितने भी जो इनलाइटन महापुरुषों ने जिस अमृत को पाया है, वो अमृत आप भी पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, हर एक व्यक्ति के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो परमात्मा हो जाए। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज करेगा। एक पीपा भगत हुए हैं, वो कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सदगुरु कोई लखावे। कोई सदगुरु, कोई इनलाइटेंड महापुरुष जो तुम्हारे ऊपर करुणा दया करके उस सत्य के बारे में बता दे। कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, इस 27 तारीख से सत्य की खोज, उस अमृत की खोज के लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और श्रद्धा भक्ति से हाउ टू नो योर सेल्फ, कैसे तुम अपने को जानो, और द रेट्रीट टू गो बैक, कैसे हम अपने सोर्स की तरफ जा करके उस अमृत को प्रदान करें। क्योंकि ध्यान का भाव है अंदर की खुदाई। जब अंदर आप खुदाई करेंगे तो खुदाई करते करते जाते जाते एक ऐसा समय आएगा कि जो परमपिता परमात्मा जो अमृत है, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, ऐसा छांदोग उपनिषद में नारद को उपदेश करते हैं। वहाँ पर सनकादिक उपदेश करते हैं कि हे नारद, यदि तू उस अमृत को, उस भूमा को, उस परमात्मा को, यदि उस परम आनंद को पाना चाहता है तो तुम अंदर प्रवेश कर। साथ संगत जी, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से परे जो बियॉन्ड है, उसका अनुभव कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। और हर एक व्यक्ति के अंदर वो पॉसिबिलिटी है, और जो उसको खोज करेगा, जो श्रद्धा भक्ति से उस अमृत को प्राप्त होगा। वही है मरकजे काबा वही राह बुतखाना जहाँ दीवाने दो बैठ के सनम की बात करते हैं। तो आइए 27 तारीख से हम लोग बैठ कर के वो जो सनम है वाहिगुरु परमात्मा जो सबके अंदर छिपा हुआ है उसका अनुभव करके, उसका दर्शन करके, उसका अवलोकन करके, ब्रह्मविद ब्रह्मय भवति, जिसको जानने के बाद व्यक्ति वही हो जाता है, ऐसा हमें श्रुति भगवती कहती है। तद अपश्यत तद भवत तदासी, जिसके एक क्षण के दर्शन से व्यक्ति वही हो जाता है। तो आइए हम लोग 27 तारीख से सुबह 6:45 से लेकर के 7:30 तक अंतर यात्रा करें और अंतर यात्रा करके उस अमृत को प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य सदा के लिए अमर हो जाता है। और मैं तो इतना ही कह करके यही संदेश देने के लिए ये दास आपके पास आया है। और यहाँ पर जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, आप लोगों का प्रयास समाज की भलाई के लिए हर एक क्षेत्र में जो आपका प्रयास है बहुत सराहनीय है। और लोगों को आप सत्य के मार्ग पर ले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष संतों को बुला करके उनके अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। यह कमेटी के सारे मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा इनकी आयु लंबी हो, सद्बुद्धि हो, ताकि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु और माँ अमृतम गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।